ओम शांत। गुड मॉर्निंग। तो आज हम जिस टॉपिक पे जर्निंग करने वाले हैं, देर आर टू टॉपिक्स। सो वन इज कि सदा साक्षी, हर कदम पर साक्षी और बाप के साथी। और दूसरा टॉपिक है कि कर्म बंधन को कैसे खत्म किया जाए। तो हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्यों आती हैं? क्या लगता है? हम जो भी यहाँ पे करेंगे वो साथ साथ क्वेश्चन आंसर होगा, तो आपको जल्दी से आंसर करना है ताकि हम टाइम से कंप्लीट भी कर पाएं। तो जो भी हमारे जीवन में सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, जो भी आप उनको नाम दें, वो आती हैं तो क्यों आती हैं? हमारी चेकिंग करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही। और कोई कुछ कहना चाहता है? वापस कहाँ? वापस जाने के लिए जी। तो वहां वापस जाने के लिए सिचुएशंस आने की क्या जरूरत है जी? सिचुएशंस अनुभूति करके जाती है या हम सिचुएशन से अनुभूति करते हैं? ठीक है। तो वापस जाने से पहले सिचुएशंस इसलिए आती हैं क्योंकि वापस, जैसे बाबा ने बोला कि संपूर्ण बने बगैर, संपूर्ण पावन बने बगैर हम वापस तो जा नहीं सकते। तो जो सिचुएशंस आती हैं तो वो या तो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं या फिर हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, है ना? तो फिर हम उन्हें प्रॉब्लम्स ना कह के क्या नाम दे सकते हैं? कोई दूसरा नाम दे सकते हैं? पेपर। पेपर भी थोड़ा सा नेगेटिव साउंड होता है ना। गुड साइन। अच्छा, साइड सीन भी नाम दे सकते हैं, शिक्षक भी नाम दे सकते हैं, साइन ऑफ प्रोग्रेस नाम दे सकते हैं। वेरी गुड। तो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रामा में बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे लिए डिजाइन किए हुए कुछ सिचुएशंस हैं। बिल्कुल एक्यूरेटली जिस चीज की हमारे अंदर कमी है, जिस शक्ति की, उसी शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी सिचुएशन ड्रामा हमारे सामने लेकर आता है। ये हमारे सामने मैटर ही नहीं करता कि वो आपसे आ रही है या वो आपसे आ रही है। सिचुएशन आई इसलिए है ताकि मेरी उन्नति हो सके। ठीक है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि दीज आर परफेक्टली डिजाइन ट्रिगर्स। किसी को अगर समझ में नहीं आए कि क्या मतलब है तो प्लीज पूछ लेना। परफेक्टली डिजाइन ट्रिगर्स माना ड्रामा में बिल्कुल एक्यूरेटली नूंधी हुई ऐसी सिचुएशन, ट्रिगर्स आप कह सकते हैं, कोई भी परिस्थिति जो हमारे सामने आ जाए, स्टिमुलस। ओके।
तो जब कोई भी ऐसी परिस्थिति या कोई भी ऐसे ट्रिगर्स हमारे सामने आते हैं तो वो हमें थोड़ा सा कितनी बार हिट करते हैं, है ना, कितनी बार अंदर जाके चुभता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो अगर हमारे शरीर पर कोई घाव है और नमक की बारिश होने लग जाए तो वो घाव चुभेगा ना, उस पर दर्द होगा। अगर मान लो किसी को घाव नहीं है तो उसको वो नमक की बारिश कैसी लगेगी? ऐसा लगेगा जैसे एक स्नोफॉल हो रहा हो, इतना चुभेगा नहीं, है ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बारिश ना हो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेनकोट पहन सकते हैं, उससे अच्छा ऑप्शन भी है एक, क्या हो सकता है और? घर से बाहर ना निकले, निकलना तो पड़ेगा ना भाई, राजयोगी हैं।
तो फिर वापस ऊपर कैसे जाएंगे अगर सिचुएशन से भागेंगे तो?
एग्जैक्टली। हाँ जी, हील कर सकते हैं और बाप की छत्र छाया में रह सकते हैं। और बाप की छत्र छाया में रहकर भी तो वो घाव भरेगा ना, है ना, तो वो घाव चुभेगा नहीं। ऐसे ही जब ये सिचुएशंस आने लग जाती है ना, तो हमने इसको कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं ताकि हम याद रख सकें। तो आत्मा के ऊपर जो घाव है ना, इतने लंबे समय से जो हम यात्रा करते आए हैं, थोड़ी बहुत ठोकर खाई है, चोट लगी है, तो उसको हम नाम दे सकते हैं कि जो आत्मा के ऊपर जो चोट लगी है उसको हमने नाम दे दिया बैड, सैड एंड मैड। ठीक है, वूंड ऑन द सोल, है ना। तो ये आत्मा के ऊपर घाव है। तो जब ये ट्रिगर्स आके इस पे हिट करते हैं तो हमें दर्द की अनुभूति होती है। कितनी बार हमें पेन महसूस होता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम यूजुअली दो तरीके से इस चीज पे रिएक्ट करते हैं। एक हम कहते हैं कि एक तो हम क्या करते हैं, कितनी बार किसी ने कुछ कहा या कुछ अपशब्द कहे हमें, तो हम क्या करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हम प्रोजेक्ट करते हैं, माना हम बाहर की तरफ सुनाने लगते हैं किसी को, है ना। तो इसको हमने एक नाम दे दिया कि हम एक प्रोजेक्शन करते हैं, माना किसी को सुनाना, जैसे को तैसा है, बाहर उगलना। और दूसरा हम क्या करते हैं, कितनी बार हम उसको सप्रेस कर देते हैं, अंदर पी जाते हैं, गुस्से को पी जाना। जैसे उसका हम एक लाइव डेमो देख सकते हैं अभी, ठीक है। एक परिस्थिति लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम उसमें प्रोजेक्ट करते हैं और कैसे हम सप्रेस करते हैं। अब मान लो ये एक सेवाधारी बहन है और मैं एक वरिष्ठ भाई हूं, उल्टा कर दे। अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि वरिष्ठ भाई जो इस बहन के सीनियर हैं और ये बहन एक सेवा के प्रोजेक्ट पे एक सेवा को लीड कर रही थी, तो अभी मैं बहन के पास जाता हूं, बहुत प्यारे शब्द कहूंगा, बहन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सेवा में, जो मैंने आपको एक सेवा दी थी जिसको आप लीड कर रहे थे, तो आप कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि आपके पास शायद और बहुत सेवाएं हैं, तो ये सेवा मैंने उस वाली बहन को दे दिया, वो लीड करेंगी। आई होप कि ये ठीक है ना।
ऐसे कैसे ठीक हो सकता है ये, आपने कैसे मुझसे पूछे बिना कैसे उनको ये सेवा दे दी। मैंने हर रोज अमृत वेला उठ के इसकी प्लानिंग की है, इतना काम किया है, उस बहन की स्थिरता देखी है, उसकी स्थिति भी नहीं है सेवा करने की।
प्रोजेक्शन, फिर से सेम सिचुएशन कि बहन वो सेवा मैंने किसी और बहन को दे दी आपके बदले।
ठीक है भाई, आप समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बिल्कुल भी समझ नहीं है इस भाई को, ऐसे कैसे किसी और को सेवा दे सकते हैं मुझसे पूछे बिना। इतने साल हो गए ज्ञान में, परखने की शक्ति तो आज तक नहीं आई। चलो मैं तो समझदार हूं, मैं ही इस अपमान को पी लेती हूं। ठीक है, दो दिन काम करेंगे ना उस बहन के साथ, तो अपने आप सारी समझ आ जाएगी।
सप्रेशन, आप देख सकते हैं कि कैसे हमने, बाहर तो हम हंस रहे हैं, हमने इज्जत से बात की, रिस्पेक्ट दी, बट अंदर कहीं ना कहीं वो हमने जहर को पिया, है ना, दुख को लिया, अंदर गया वो। जब हम चाहे हम प्रोजेक्ट करें, कोई गुस्सा भी करे या गुस्सा पी जाए, दोनों ही सिचुएशन में आत्मा दर्द में जाती है, पेन महसूस करती है, भारीपन आ जाता है। और उस पेन को अगर हमें रिलीज करना नहीं आता, उससे बाहर निकलना, उसे हील करना नहीं आता, और उस पेन में अगर आत्मा तड़पती है, तो वो कुछ करती है ताकि वो एटलीस्ट उस पेन को, उस दर्द को सुन कर सके या दबा सके, टू नम द पेन। तो उसके लिए हम कुछ चीजें कितनी बार करते हैं, जिसको हमने, वो जो एक्टिविटीज हैं, जो भी हम करते हैं ना, उसको हमने यहां पे एक और राइमिंग नाम दिया है, जिसको हम बोल देते हैं फैड। माना कि कोई भी एक शॉर्ट लिव्ड एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं टू नम द पेन, उस दर्द को सुन करने के लिए। और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसमें, जैसे कितनी बार स्लीप, सो जाना, है ना, सो के उठ के हमें अच्छा लगेगा, स्लीप। उसके बाद हम और क्या करते हैं, कितनी बार व्हाट्सएप, है ना, फेसबुक, कुछ भी ना, शॉपिंग पे चले जाते हैं, और क्या करते हैं, हाँ जी, स्थान बदली कर देते हैं, तो हम रीलोकेट हो जाते हैं। और क्या होता है, एक्सेस ईटिंग, है ना, बिल्कुल। कितने लोग जिम करना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, है ना, वॉकिंग करना शुरू करते हैं, और म्यूजिक, बिल्कुल, गॉसिपिंग, चिटचैट, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना, ये सभी चीजें इन अ वे हमारे लिए जरूरी भी हैं, खुद को हेल्दी रखने के लिए या अपनी नॉर्मल दिनचर्या में ये सब चीजें जरूरी भी हैं। पर हमें ये देखना है कि उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है। क्या मैं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो करना चाहिए और मेरा मन है, शौक है, या फिर मैं उस दर्द को, या उस दर्द से भागने के लिए, या उस दर्द को नम करने के लिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूं। यह हमें अपने आप से पूछना है। कोई हमारे लिए नहीं कह सकता कि आप ये इसलिए कर रहे हैं, ये सवाल हम खुद से जान सकते हैं या ये सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं कि ये सब चीजें अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि कैसे हम ये सब चीजें करते हैं जो कि करनी जरूरी है, बट उसके पीछे हमारा भाव क्या है वो हमें समझना है। मान लो शरीर में कोई बीमारी लगी है और मैं फिर भी काम में लगा हुआ हूं, मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, वो बीमारी बढ़ेगी। अगर इस बीमारी को हम ठीक नहीं करेंगे, नजरअंदाज करते रहेंगे, कुछ और किसी और चीज में लग जाएंगे और उसको नजरअंदाज करेंगे, हो सकता है कुछ पल के लिए वो बीमारी हमें महसूस ना हो क्योंकि हमारा फोकस पूरा किसी और चीज पे है, पर बीमारी तो अंदर से बढ़ती जाएगी ना अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया फैड एक्टिविटीज। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम या तो प्रोजेक्शन मोड में हैं या सप्रेशन मोड में हैं, क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म है ना ये चीजें कि कितनी बार हमें समझ में नहीं आता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो नम द पेन तो नहीं है कहीं इसके पीछे रीजन, तो उसके पीछे ना कुछ चिन्ह है, कुछ सिम्टम्स हैं। तो क्या हो सकता है कि जिससे हम अपने आप को देखें और पता कर सकें कि मैं आइदर प्रोजेक्शन या सप्रेशन मोड में तो नहीं हूं, तो क्या लगता है कि वो क्या चीजें होंगी, कैसे क्या चीज बताएगा कि मैं या तो यहां पे हूं या यहां पे हूं, क्या लगता है? तो कौन से चिन्ह हैं, कौन से सिम्टम्स हैं? थॉट्स, थॉट्स कैसे थॉट्स, नेगेटिव और फास्ट थॉट्स। और जी फेस विल से जी, और चेहरे से पता चल जाएगा आप ये कह रहे हैं जी, और बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा वो सामने वाले को शायद। अगर हमें खुद की चेकिंग करनी है ना, ये खुद की चेकिंग है, खुद को कैसे समझ में आएगा कि मैं या तो प्रोजेक्शन मोड में हूं, क्योंकि देखो प्रोजेक्शन मोड में भी क्या होता है, कितने हम किसी को सुना देते हैं ना, उसके बाद हम बोलते हैं सच ही तो कहा था, आजकल तो लोगों को सच भी कड़वा लगता है। एनर्जी एक्सचेंज पॉजिटिव नहीं रहेगा। अच्छा, किसी को सुना दिया, सच कहा, सच ही कहा मान लो, पर सुनाया और सच बोला, क्या वो सच का कड़वा लगना, हम बोलते ना सच कड़वा लगता है, सच कड़वा होता है? मान लीजिए किसी ने कोई गलती की और मैंने उसको सुना दिया और वाकई उसने गलती की थी और मैंने उसको बता दिया भरी सभा में, सच कहा पर उसको कड़वा लगा, सच कड़वा लग सकता है? नहीं लगेगा, पर लगता है ना लोगों को, वो उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने सच कहा था, सभ्यता नहीं थी, स्थान सही नहीं था, उचित नहीं था। अगर अकेले में सुनाया, प्यार से सुनाए, अकेले में प्यार से सुनाए जी, जो भावना है ना, जो संकल्प रूपी बीज है कि मुझे इसको सुनाना है जी, तो क्योंकि कल्याण की भावना भाव जी से कही, अकेले में सुना दें तो जो भावना ना, जो उसके पीछे इंटेंशंस है ना, जो संकल्प रूपी बीज है वो अपवित्र है, और उससे जो झाड़ निकलेगा उस पर जो फल लगेंगे, मतलब जो शब्द हैं और जो हमारे कर्म है, जब बीज झूठा तो फल भी झूठा, तो हम ये कह नहीं सकते हमने सच बोला, भावना इम्प्योर थी। एक सच ही है जो हमेशा मीठा लगता है, भावना को चेक करना है उसके पीछे। बट एनीवे, वो हमारा क्योंकि प्रोजेक्शन मोड था ना, तो कहां हम भावना चेक करने ले बैठेंगे ना। तो क्या होता है कि जब हम लोग या तो प्रोजेक्शन या सप्रेशन मोड में है ना, तो अंदर ना आर माइंड गोज इनटू अ स्पिन, माना कि अंदर क्वेश्चंस की क्यू लग जाती है जो पापा कहते हैं। ठीक है, ये हमारी चेकिंग है, ये हम खुद से चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे वही वाले ना, को को वाई, मतलब कि
क्यों,
क्यों,
क्या,
व्हाट,
कैसे,
कैसे माना हाउ, वेयर, वेन, है ना, व्हाट हु, और जैसे कि क्यों, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, व्हाई मी या व्हाई नॉट मी, ये सेवा मुझे क्यों नहीं मिली, या ये काम मुझे क्यों मिला, व्हाट, क्या
क्या समझते हो अपने आप को,
एक्सपीरियंस रिवन, हाउ
ऐसा कैसे कर सकते हो,
ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो, वे कहा सान वाला अभी ऐसा यहां पर भी ऐसा व्हेन अभी ऐसा होना था और क्या हु
आप होते
हु आर यू टू से दिस, आप कौन होते हैं ये कहने वाले, ये हम कहेंगे नहीं बट ये यहां पे चलेंगे। तो जब ऐसे सवाल अंदर चल रहे हैं ना मान लो, तो समझ जाना हम या तो इधर हैं या इधर हैं, है ना, मतलब घाव है और हीलिंग नहीं हो रही है, क्लियर है इतना। तो इसके और इंडिकेशंस हैं, इसको हम बोल देते हैं, और ये भी सिर्फ याद रखने के लिए, इसको हम बोल देते हैं 5 नेगेटिव C's, सी जो अल्फाबेट है, नेगेटिव C's। तो क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है, कंपैरिजन से होती है, तुलना करते हैं हम, मैं तो ऐसा कभी ना करता, है ना, माना कि जो सामने वाला है उससे हम अपनी तुलना कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया पर मैं तो कभी ना ऐसा करता। किसी पे जाएंगे तो वो भी कहेंगे हाँ हम तो ऐसा कभी सोचे भी ना, वो कर कैसे सकते हैं ना। तो कंपैरिजन तुलना से शुरू हुआ, उसके बाद क्या होता है, कमेंटिंग होती है, टिप्पणियां करते हैं, ठीक है, हम सॉरी हर एक की डिटेल में नहीं जा सकते, कमेंट माना टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, माना कि शिकायत, शिकायत भी कर देते हैं लोगों की ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। और उसके बाद ये देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, उसके बाद हम क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना, आलोचना करना शुरू कर देते हैं, और एक जो आखिरी है कंडेम, जिसको हम बोलते हैं माना कि उसकी निंदा, उसका बहिष्कार कर देना, उसको अपनी लाइफ से निकाल देना, माना उसको दूर कर देना, रिजेक्ट, हैवी वर्ड काफी। तो ये देख रहे हैं ये इस सीक्वेंस में चलता है, और इसका जो रिजल्ट है ना उसको हम बोल देते हैं कि हम क्रिपल्ड, माना स्पिरिचुअली क्रिपल्ड हो जाते हैं, माना हम अपंग हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि अब मेरे बस का कुछ नहीं है, अभी मुझे ना कुछ सुनना है, आप मेरे से अभी बात भी मत करो, अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मतलब कि अब देख रहे हैं कि जैसे कोई अगर अपंग व्यक्ति, वो शायद कोई कार्य नहीं कर सकता, वो असक्षम है, ऐसे ही हम स्पिरिचुअली क्रिपल्ड हो जाते हैं। तो ये पूरा ऐसा ड्रामा हमारा चलता है, ये चेकिंग के साइंस हैं, चेक के बाद हमें चेंज करना, तो ये पहले चेकिंग। आगे आरती, तो क्या करें,
तो अभी चेकिंग पता चल गई, अब हमें पता चल गया कि आत्मा जो है वो रोगी बन गई है ना, आत्मा बीमार है, डिसईज्ड है, माना डिसीज्ड है ना सोल। तो हम क्या करेंगे, जब हम बीमार होते हैं तो हम कहां जाते हैं, डॉक्टर के पास, और अगर बीमारी बहुत ही बढ़ जाए तो किसके पास जाते हैं, सर्जन के पास। तो अभी ये बीमारी छोटी है या बड़ी है, बड़ी है ना, बहुत बड़ी है, महारोग। तो अभी हम किसके पास जाएंगे, रूहानी सर्जन के पास।
अच्छा, ये मिटा
है ना, तो अभी हम चलते हैं रूहानी सर्जन के पास, और ये हूं ये बाबा और ये मैं, ठीक है। चलो एक लाइव एग्जांपल, भाई आपसे कहा था हमें बोर्ड बड़ा चाहिए, आप फिर भी छोटा ले आए, इतनी बार बोला, सही बात,
कल भी समझाया था,
कल भी समझाया था, इतने साल हो गए ज्ञान में, अभी तक बात समझ नहीं आती, सही बात है।
इसको मिटा दे, यहाँ पे अगर जगह चाहिए, नहीं
चल रहे, कोई बात नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, हीलिंग करनी है ना, तो हम रूहानी सर्जन के पास पहुंच गए, ठीक है। इसको मैं बोलती हूं कि ये ककून है, ककून समझते हैं आप, सुरक्षा कवच, छत्र छाया, बाबा की छत्र छाया। तो जब हम, हाँ जी, कैनोपी, बाबा कैनोपी है ना, तो बाबा की छत्र छाया में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारा हीलिंग प्रोसेस साथ के साथ शुरू हो जाता है ना। तो इसका भी क्या इंडिकेशन होगा कि हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया? तो मेजरली क्या होगा जिसको आप एकदम इंस्टेंटली समझ सकते हैं कि ये जो जितने भी ये सवाल थे ना, ये वाले व्हाट व्हाई व्हेन हाउ, ये सारे, ये सब हम बाहर के बजाय अंदर करने लगेंगे। हु एम आई, है ना, मेरा ड्रामा में रोल क्या है, है ना, मैं यहां पे क्यों आया हूं। तो ये सारे सवाल जब हम आत्मा के साथ, हम जब स्वचिंतन या प्रभु चिंतन करते हैं तो उन्नति शुरू हो जाती है ना, है ना। तो क्या है कि ये जो कैनोपी है ना, ये जो हमने कुकून बनाया है, तो जैसे ही हम कुकून में बैठते हैं ना, तो उसी समय हम क्या हो जाते हैं, ड्रामा से साक्षी हो जाते हैं। ये जितना भी पार्ट यहां बनाया ना, ये ड्रामा में होता है ना। तो ड्रामा से हम साक्षी हो जाएंगे क्योंकि बाबा के हम साथी बन गए हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे हमने ये नेगेटिव सीज किए थे ना, ऐसे ही फिर वो जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो पॉजिटिव सीज में सब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे शुरू होगा वो, इसको मैं यहां लिखती हूँ क्योंकि भाई ने बड़ा बोर्ड नहीं दिया ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंटर्ड हो जाऊंगी मैं, माना स्थिरता आ जाएगी सबसे पहले, है ना, कि मैं पहले जो भी ये सब विचार ये सब चल रहा था व्यर्थ, उससे मैं डिटैच जैसे ही होंगी तो मैं स्थिर हो जाऊंगी उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कनेक्टेड, तो बाबा के साथ मैं जुड़ जाऊंगी। जब तक सेंटर्ड नहीं होंगी तो बाबा के साथ जुड़ नहीं सकते, राइट। कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, शक्ति आने लगेगी, माना भरपूरता आने लगेगी ना, बाहर से जो भी लेने की इच्छा थी वो खत्म हो गई, बाबा के साथ जैसे ही जुड़े तो भी खाता बढ़ने लग जाएगा, भरने लग जाएगी आत्मा, तो संतुष्टता आ जाएगी, है ना। जब हम बाबा के साथ जुड़ेंगे तो संतुष्टता आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही संतुष्टता आएगी तो क्या होगा, ये जो भी ड्रामा में हो रहा था ना, जो कुछ भी सिचुएशन आ रही थी, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। जब तक संतुष्टता नहीं है, जब तक खालीपन है आत्मा में, केवल तब तक ही सवाल बाहर होते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अभी ऐसा होना था, ये सारे सवाल तब आते हैं जब आत्मा को कुछ पाने की इच्छा होती है, अंदर खालीपन होता है। लेकिन जैसे ही बाबा के साथ कनेक्ट होने के बाद संतुष्टता आई तो साथ ही साथ क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी को और क्या कह सकते हैं हिंदी में, स्पष्टता आ गई, है ना, स्पष्ट हो जाएगा हमें कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जब ये हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, तो क्या होगा, हम कंपैशन हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, और हमें पता चल गया कि उस आत्मा की भी गलती नहीं है ना, तो हम कंपैशनेट माना केयरिंग हो जाएंगे, इसको हम केयरिंग भी कह सकते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि उसकी भी मदद हो जाए, है ना। फॉरगिवनेस की एक डेफिनेशन ये बताई जाती है कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि उसने जो काम किया उसको एक भुला देना, केवल इतना अर्थ नहीं है। फॉरगिवनेस का एक स्टेप हम बियॉन्ड जाते हैं, फॉरगिव, उसको इतनी शक्ति देना, उसको इतना गिव करना कि वो आत्मा ही परिवर्तन हो जाए, उसके संस्कार परिवर्तन हो जाए, है ना। केवल ऐसा नहीं कि मैंने सुना और मैंने उनको, चलो मैं भूल गई, लेकिन वापस जब आएगा, यहां आएगा तो फिर से वही ब्लैक बॉल जाएगी ना। लेकिन अगर मान लो यहां नहीं आएगा, मैं भूल भी जाती हूं, पर उस आत्मा की तो उन्नति नहीं हुई ना। तो जो बाबा की लैंग्वेज में फॉरगिवनेस है, क्षमा है, वो ये है कि उस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति भर देना, इतना कंपैशनेट होना, उसके लिए कुछ करना ताकि वो भी अपने संस्कार को परिवर्तन कर सके, ठीक है। तो जब हम कंपैशनेट हो जाएंगे, केयरिंग हो जाएंगे, तो आत्मा के अंदर क्रिएटिविटी आने लगेगी, है ना। वो नए नए तरीके ढूंढेगी कि कैसे मैं इसके अंदर वो शक्ति भर सकती हूं, वो नए नए तरीके ढूंढेगी अपनी स्व उन्नति के, और विश्व उन्नति के, है ना। तो इस तरह से ये सारा देखिए, इसमें भी कैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है ना। तो सबसे पहले सेंटर्ड हुआ, फिर कनेक्शन हुआ, फिर कंटेंटमेंट आया, उसके बाद क्लैरिटी आई, फिर कंपैशनेट। अच्छा तो क्रिएटिविटी एंड देन मुझ आत्मा की उन्नति। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि जैसे ही हम बाबा के साथ कुकून में बैठेंगे ना, उसी समय हम ड्रामा से साक्षी हो जाएंगे, है ना। तो हमें अगर अपनी उन्नति करनी है तो ड्रामा के साथ हमें साक्षी तो होना ही पड़ेगा, और तभी सारे प्रोसेस अंदर जो उन्नति का होना है वो शुरू हो जाएगा।
बाबा के साथी और हर कदम में साक्षी। जी बिल्कुल करें,
वेरी गुड,
क्रिएटिविटी आ गई ना।
बिल्कुल देखो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी आ गया, देखो कितने सारे पॉजिटिव सी हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भाई।
तो होता क्या है कि देखो, यहाँ पे जब तक हम इस ककून के अंदर नहीं थे तब तक हम ड्रामा से सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहे थे, है ना। और साक्षी बना माना ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब वर्सेस ऑब्जर्व, ऑब्जर्व माना साक्षी हो जाना, है ना, देखना, एब्जॉर्ब माना उसको सोखना। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर आ गया। और जब हमें कोई परिस्थिति ऐसे चैलेंजिंग आती है, जब हम योग में बैठते हैं और अच्छा योग हुआ हमारा, तो उसके बाद क्या आती है, हमें एक्सेप्टेंस आ जाती है अपना अपना कि चलो ठीक है, परिस्थिति भी ठीक लगती है, व्यक्ति भी ठीक लगता है, हम वो जैसे हैं उसको वैसा एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। वो तो नहीं बदले ना हमारे योग भी करने से, पर हमारे अंदर बदलाव आया तो ड्रामा के प्रति हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। पहले इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, आपने ऐसा क्यों किया, अब ऐसा क्यों हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, अब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस आ गया। तो ये तो थियोरी पार्ट था, हम थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक तो ये चीज हमें ये शो करता है कि माय पीस ऑफ माइंड हैज नथिंग टू डू विद द ड्रामा, है ना। जब तक मैं बाप की छत्र छाया में हूं तो ड्रामा का मुझे प्रभाव, ये जो परिस्थिति है, ये जो और लोग हैं, उनका मेरी सोच स्थिति पे असर नहीं होना चाहिए। अब मान लो अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें, अभी हम इस ककून की ही बात कर रहे हैं और इसी में जाते हैं। जैसे अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें तो हम युगल हैं, हस्बैंड वाइफ, इन अ वे डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये, ठीक है। अब मान लो आरती के पेरेंट्स हैं तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ ना, क्योंकि थ्रू आरती हैं वो कि मेरे संपर्क में आए या मेरे रिश्ते में आए। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। मान लीजिए अगर मेरा और आरती का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, इस डायरेक्ट रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है, अभी इसके पेरेंट्स कितने भी अच्छे हों, मैं इनमें 1000 कमी आराम से निकाल सकता हूं, आराम से, है ना, इजी है, और लड़ाई झगड़ा वो सब कुछ हो सकता है, और मैं करूंगा भी अगर नहीं होगा तो, क्योंकि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, होगा ना, कि भाई इसको बताऊं कि इनके पेरेंट्स कैसे हैं, इस तरीके से ऐसा होगा। अब मान लो अदर साइड, अगर ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है और पेरेंट्स वो इतने अच्छे नहीं भी हैं, तो भी मैं उनके साथ मैनेज कर लूंगा, है ना, इजी रहेगा, वो कुछ कहेंगे भी ना तो मैं शांति कायम रखने की कोशिश करूंगा, फिर भी सुनाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो मेरा इनडायरेक्ट भी एटलीस्ट मेरे एंड से अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्ट रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, ठीक है, कि आरती को भी तो बुरा ना लगे ना, ये रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसकी वजह से। ये तो हो गया लौकिक दृष्टि से देखें। अब हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, ठीक है, कोई भी कॉस्ट्यूम में हो, किसी भी चोले में हो, किसी भी शरीर में हो, एक रिश्ता जो सदा कायम है वो बाबा के साथ, ठीक है, और ये मैं। अब ये रिलेशनशिप है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब इसके अलावा बाकी दुनिया में जितने भी और लोग है ना, जो भाई है ना, वो सारे इनडायरेक्ट हैं। अब होता क्या है कि अभी प्रूफ क्या है कि ये रिश्ते में बहुत प्यार है, या ये रिश्ता बहुत अच्छा है, वो यहां से भी प्रूफ हम देख सकते हैं कि ये रिश्ते कैसे जा रहे हैं यहां पे ना। अगर इनके प्रति वो लड़ाई झगड़ा वो सब चीजें है ना, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है ना। जब ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा ना, प्यार होगा इस रिश्ते में, तो ये जो रिश्ते हैं ना, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, वैसे तो दोनों एंड से, बट एटलीस्ट मेरे एंड से अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो हम जो कितनी बार दुनिया में और वैसे भी जनरली भी कितनी बार हम इसी को नाम को लेके, इसी को लेके झगड़ने लग जाते हैं। जैसे समझ लो दो भाई हैं, उनके माँ बाप, अब दो भाई अगर आपस में झगड़े तो उसमें दुख किसको पहुंचता है ना, पेरेंट्स को पहुंचेगा ना। अब एक बेटा जो है वो माँ बाप से बहुत ही प्यार करता है, बहुत ट्रू लव, तो सामने वाला भाई कितना भी झगड़े वो नहीं झगड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि दुख किसको पहुंचेगा ना, और जिससे वो प्यार करता है उसको वो दुखी नहीं देख सकता। और माँ बाप भी क्या कहेंगे, माँ बाप ये नहीं देखेंगे कौन सही है कौन गलत है, वो कहेंगे एटलीस्ट तुम तो समझदार हो, तुम मत लड़ो, यही कहेंगे ना। अब ये सोचो हमारा ये इटर्नल फादर, ये भी तो मात पिता ना, ये भी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके प्रति, वही है। ये कुछ भी सामने से कोई भी ट्रिगर आए, कोई कुछ भी कहे, पर अगर ये रिश्ता अच्छा है ना, तो मेरे ये जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है ये भी अच्छे हो जाते हैं। अब ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप पे हमने ना बहुत काम करके देखा ना, हर एक के साथ बना के चलने की कोशिश की, हर एक को समझाने की कोशिश की, तो हमने मेहनत भी देखी और हमने उसका परिणाम भी देख लिया। बहुत मेहनत है ना, है ना, बोझ है, जैसे मुरली में आज की ना, बोझ बहुत हो जाता है, बोझ बहुत है। हम एक काम करते हैं, इस डायरेक्ट रिलेशनशिप पे और काम करना शुरू करते हैं। मेरा और आरती के रिश्ते में प्रॉब्लम थी ना, तो माँ बाप से भी झगड़ूंगा, चाची चाचा जो भी है ना रिश्तेदार सबसे झगड़ने लग जाऊंगा, फिर उनसे मनाने की कोशिश ये वो, उससे अच्छा कि अगर मेरा ये डायरेक्ट रिलेशनशिप अच्छा हो जाए ना, एक बार मैं अगर इस डायरेक्ट रिलेशनशिप पे काम करूंगा, उनको मैनेज करना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि इस रिश्ते में, डायरेक्ट रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है। ऐसे ये इस रिश्ते में जब इस पे मैंने काम करना शुरू कर दिया डायरेक्ट रिलेशनशिप पे, और जो कि काम करना बड़ा आसान है इनके मुकाबले, तो मेरे सारे रिश्ते सुधर जाएंगे, है ना। तो ये ट्रिगर्स नहीं रहेंगे, आईना बन के आए, मैंने चेंज किया, मेरी शक्ति को बढ़ाया, रिश्ते और अच्छे हो गए।
बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम डायरेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं ना, तो जिसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है बाकी रिश्तों को वही देख लेता है। बाबा भी कहते हैं ना, मुझे दे दो मैं अपने आप देख लूंगा, है ना। तो बिल्कुल हमें वही करना है, लौकिक रीति से भी हस्बैंड वाइफ अगर अच्छा रिश्ता है तो हस्बैंड या वाइफ अपने आप देख लेंगे अपने परिवार को कैसे संभालना है, उनको बीच में आने भी नहीं देंगे, एक सुरक्षा कवच हो जाएगा ना। तो इसी तरह बाबा के साथ भी हर आत्मा 8 रिश्तों के सुखों की अनुभूति करना चाहती है, हर आत्मा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लौकिक रीति से या अलौकिक रीति से। तो उन 8 रिश्तों की जो अनुभूति है वो कहीं ना कहीं आत्मा में सेव्ड है, स्टोर्ड है वो एक्सपीरियंस, लेकिन अभी क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम उस सुख की अनुभूति करने की कोशिश करते रहते हैं, उनसे लेना चाहते हैं, उनसे लेना चाहते हैं। जो भी हमारे यहां के रिश्ते हैं, कोई दोस्त का हो, पति का हो, पिता का हो, कोई भी हो, हम यहां से लेने की कोशिश करते हैं और हम निराश होते हैं। वो निराश क्यों होते हैं, क्योंकि जिनसे हम ले रहे हैं वो भी भरपूर नहीं है, है ना, वो भी हमसे मांग रहे हैं, एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है, यही है ना। तो जब हम इन 8 संबंधों की अनुभूति एक बाबा के साथ कर लेते हैं, तो वो सारी भरपूरता अपने आप आ जाती है। तो जब मैं आत्मा भरपूर हो जाती हूं, तो मुझे बाहर से लेने की इच्छा ही नहीं रहती, बल्कि मैं और उसको देने की कोशिश करती हूं, भले वो मुझसे लेने आए हैं या देने आए हैं, इट डज नॉट मैटर, है ना, क्योंकि मैं खुद भरपूर हो गई, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली दूंगी, मुझे देने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि एक खाली कोई बर्तन है, जब तक वो खाली है ना, तब तक ही उसे भरने की इच्छा होगी, लेकिन जब मैं बाबा से लेके भरपूर हो जाऊंगी, जब वो बर्तन भर जाएगा, तो अपने आप वो ओवरफ्लो होगा, है ना। और ओवरफ्लो होते होते अपने आप उससे बाहर निकलता जाएगा, मुझे बाहर फेंकने की या उसको ऐसा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो क्या होता है, जब हम एक बार मान लीजिए बाबा से कनेक्ट हो गए, है ना, उसके बाद हमें लगता है हाँ अब मैं भरपूर हो गई और अब मैं जाती हूँ बाहर सेवा के लिए, ठीक है। सेवा करते करते स्थिति थोड़ी सी इधर इधर, है ना, नीचे होने लग जाती है, और सेवा करते करते फिर से वही संकल्प, वो वॉट वाले वो फिर से स्पाइरल शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। इसका क्या रीजन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मैंने बीच में छोड़ दिया, है ना। तो वो जो भरपूरता थी ना, वो केवल तब तक थी जब तक मैं कनेक्टेड थी, और उस समय जब मैंने दिया तो मैंने अपने स्टॉक में से दिया, है ना, जो मेरे पास मैंने भरा था उसमें से मैंने दिया। तो जब मैं अपने स्टॉक में से देती हूँ ना तो गारंटेड कम होगा, लेकिन जब मैं कनेक्ट होके देती हूँ, जब कंटिन्यूसली बाबा से मिलता जा रहा है, उस समय मैं भले ही सोचूं कि नहीं सोचूं वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आप ओवरफ्लो में से आपको देना है, अपने स्टॉक में से नहीं देना है, अपना स्टॉक अपने लिए है, है ना। तो अगर हमें देना है ना तो सदा काल के लिए एक कनेक्शन, वो बाबा के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, तो ही हम अपना स्टॉक भी भरपूर रख सकेंगे और अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगे।
सर्व फ्रॉम द ओवरफ्लो,
है ना, अपने स्टॉक में से नहीं देना, बी सेल्फिश, है ना।
एक चीज और है जो मुझे इसमें कहना है, जो हम आठ संबंधों की बात कर रहे हैं, अगर मेरा किसी के साथ संबंध ठीक नहीं, जैसे मित्र का, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या मैंने मित्र का संबंध बाबा से अच्छे से निभाया है
yes.
या निभाता हूं, क्योंकि अगर वहां से वो उस सुख की प्राप्ति नहीं है तो मैं उस सुख की प्राप्ति यहां के लोगों से करूंगा, या कंपेनियन की, या बच्चे की, तो क्योंकि वहां से वो भरपूरता नहीं, पूर्ति नहीं हुई, तो यहां से मांगना एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, और जैसी उस रिश्ते में एक्सपेक्टेशन आती है वो रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो भी रिश्ता यहां पे खराब है ना, वो शायद इसलिए क्योंकि वो वाला रिश्ता शायद बाबा से अभी मैंने निभाया नहीं, जैसी वो निभा लूंगा वो पूर्ति हो जाएगी, तो वो इस रिश्ते में वो देना शुरू हो जाएगा, गिवर बन जाएंगे, रिश्ता अच्छा हो जाएगा।
ओके तो अभी हम फाइव मिनट्स हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं, मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है, चला दीजिए म्यूजिक। ओम शांति। मैं आत्मा, अपने उस अनादि रिश्ते को, सदा काल के रिश्ते को याद करती हूँ। माय इटर्नल रिलेशनशिप विद बाबा इस शरीर से जुड़े सभी संबंध केवल उतने ही पुराने हैं जितना ये शरीर, लेकिन वो एकमात्र संबंध मुझ आत्मा का, परम पिता परमात्मा के साथ द मोस्ट ब्यूटिफुल, सबसे सुंदर रिश्ता मैं इस रिश्ते को महसूस करती हूं। अब मैं आत्मा देह से जुड़े उस रिश्ते को याद करती हूँ जिससे मुझे सुख की अनुभूति नहीं, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिससे भरपूरता का अनुभव नहीं, वही रिश्ता। मैं शिव बाबा के साथ जुड़ती हूँ आज अभी। मैं आत्मा उसी रिश्ते का सुख शिव बाबा से अनुभव कर रही हूँ। संतुष्ट होती जा रही हूँ। स्पष्ट होती जा रही हूँ। मैं आत्मा सर्व सुखों की अनुभूति एक शिव बाबा से करके भरपूर होकर ये सभी सुख सर्वात्माओं को देती हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ इस ककून में सुरक्षा कवच में बाप समान बन चुकी हूँ।